नमस्कार भारत, 20 मार्च बुधवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। दक्षिण अफ्रीकी देशों में ईडाई तूफान का कहर, लाखों लोग कर रहे मदद का इंतजार।
The situation in Beira, Sofala and Manica today, it's much worse than what we have.
जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल नियुक्त।
निश्चित तौर पर लोकपाल का अपॉइंटमेंट एक बड़ी जीत है और निश्चित तौर पर आगे ये चयन प्रक्रिया सुधरेगी।
प्रधानमंत्री मोदी खुद को बताते हैं चौकीदार, लेकिन जानेंगे असली चौकीदारों के क्या है हाल।
300 दिन हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है, 12 घंटा को भी कोई छुट्टी नहीं।
9000 रुपए देते हैं, ना SIPF देते हैं हमको, ना कुछ देते हैं।
महीने में अगर एक भी छुट्टी हो जाए तो उसके पैसे भी कट जाते।
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी अफ्रीका के तीन देश विनाशकारी तूफान ईडाई से जूझ रहे हैं। ये देश हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी। साइक्लोन के साथ ही इन देशों में भयानक बाढ़ और भूस्खलन का कहर भी जारी है। हालात इतने खराब हैं कि मृतकों की संख्या तक का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है, बस हजारों की मौत की आशंका है। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की साझा अपील की है। अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने IS का आखिरी गढ़ माने जाने वाले सीरिया के बागूज गांव को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है और वो इसका जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अब भी लड़ाई जारी है। बागूज में मौजूद एक BBC संवाददाता ने कहा कि समर्पण करने वाले IS लड़ाकों ने कोई पछतावा जाहिर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया है। यूरोपीय संघ के मुख्य ब्रेग्जिट मध्यस्थ ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन संघ से बिना किसी स्पष्ट योजना के बाहर निकलता है तो इसका खामियाजा व्यवसाय और राजनीति को भुगतना होगा। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से निकलने में अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं, लेकिन लंदन में इसे लेकर अभी भी उथल पुथल बरकरार है। मिशेल बानिये ने कहा कि हर किसी को नो डील की योजनाओं को अंतिम रूप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि अगर यूरोपीय संघ ब्रिटेन को और वक्त देता है तो वो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा।
What would be the purpose and outcome of an extension? And how can we ensure?
अगर वक्त दिया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होगा और उससे क्या निकल कर आएगा, और इसकी क्या संभावनाएं हैं कि अगर वक्त दिया जाता है तो आज जैसी स्थिति है वैसी आगे बिल्कुल नहीं होगी। किसी भी मामले में यूरोपीय संघ को यह आकलन करने की आवश्यकता होगी कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। ये थे यूरोपीय संघ के मुख्य ब्रेग्जिट मध्यस्थ मिशेल बानिये के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा वक्त में ब्राज़ील और अमेरिका जितने करीब हैं उतने वो पहले कभी नहीं थे। ये बातें उन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए कहीं। ट्रंप ने कहा कि वो ब्राज़ील को नेटो या किसी और सहयोगी दल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास सहयोग संगठन का सदस्य बनने की ब्राज़ील की मांग का समर्थन करते हैं। एक BBC संवाददाता ने बताया कि चूंकि दोनों नेता कट्टर राष्ट्रवादी हैं, इसलिए जाहिर है उनकी मुलाकात बेहद अच्छी रही। दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे। BBC संवाददाता का कहना है कि इससे पहले किसी और अमरीकी राष्ट्रपति ने किसी धुर दक्षिणपंथी नेता का इतनी गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया होगा। ट्रंप और बोल्सोनारो ने एक दूसरे को अपने अपने देशों की फुटबॉल टी शर्ट भी तोहफे में दी। नीदरलैंड्स की पुलिस का कहना है कि उसने सोमवार को यूट्रेट शहर में हुई फायरिंग के सिलसिले में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स की उम्र 40 साल है और उसे शहर के घरों पर छापे मारने के दौरान पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुख्य संदिग्ध गोकमेन तानिस को अभी हिरासत में रखा गया है। गोकमेन तुर्की के रहने वाले हैं। इस फायरिंग के मकसद की जांच हो रही है और पुलिस ने गवाहों को सामने आने को कहा है। इससे पहले सोमवार को दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। BBC समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। चक्रवाती तूफान ईडाई के कारण इस समय दक्षिणी अफ्रीका के 3 देश बुरी तरह पीड़ित हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और इसके कारण 1,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे इन इलाकों में आई सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे को सुनिए सिंधुवासिनी से।
पानी में तैरती सैकड़ों लाशें, टूट कर बिखरे पेड़ों, बिजली के खम्भों और तारों से अवरुद्ध सड़कें, जगह जगह दरकती जमीन और तकरीबन 177 किलोमीटर की रफ्तार से कहर बरपाता तूफान ईडाई, बुरी तरह जख्मी लोगों से भरे अस्पताल और किसी तरह जान बचाने की कोशिश करते हजारों लोग। पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी अफ्रीका के 3 देशों में ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। ये 3 देश हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तूफान ईडाई शायद दक्षिण अफ्रीकी इलाकों में आई अब तक की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। एक वक्त पर तो मोजाम्बिक के तकरीबन 70 लाख लोग ईडाई के सीधे संपर्क में थे। अकेले मलावी में 900 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के सहायता कर्मियों की आशंका है कि मोजाम्बिक का बूजी शहर पूरी तरह से डूब सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ेगा। तूफान की वजह से जिम्बाब्वे के पूर्वी हिस्से में भी भारी तबाही हुई है। वहीं मलावी में लगभग 100 लोगों की मौत की आशंका है। पायरा शहर के नेल्सन मुआदा अपने परिवार के साथ बचकर इटली जाने में कामयाब रहे। उन्होंने रोम से बीबीसी से बात की और बताया कि उनके गृहनगर में कैसे हालात हैं। सुनिए।
All the schools were destroyed. The central hospital of Beira has been destroyed.
सारे स्कूल बर्बाद हो गए। बायरा का सेंट्रल हॉस्पिटल नष्ट हो गया है। आप जानते हैं कि मोजाम्बिक एक गरीब देश है। बायरा को 1-2 महीनों में वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। हमें शहर को दोबारा खड़ा करने में महीने और साल लग जाएंगे। शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे शहर पर बम गिरा दिया हो। ये थे तूफान में बचे एक शख्स के शब्द। मोजाम्बिक में तूफान प्रभावित इलाके में किए गए एक हवाई सर्वेक्षण से पता चला है कि तकरीबन 50 किलोमीटर तक का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। बीबीसी संवाददाता मिल्टन कोसी ने मोजाम्बिक की नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेसा मशल से बात की और सबसे पहले जमीनी हालात के बारे में पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
The situation in Beira, Sofala and Manica today, it's much worse than what we have seen in 2000.
आज बायरा, सुफाला और मनिका की स्थिति 2000 की आपदा से भी बहुत ज्यादा बुरी है। संपर्क और दूर संचार के साधन पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। अभी इस बारे में सही जानकारी नहीं है कि गाँव में कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग मौत से जूझ रहे हैं और कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। हालात बेहद बेहद गंभीर हैं। लोगों को हर छोटी बड़ी चीज की जरूरत है, फिर चाहे वो खाना हो, दवाएं या कपड़े। मैंने आज सुबह संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद को फोन किया और संयुक्त राष्ट्र से खास तौर पर प्रशिक्षित टीम भेजने की अपील की है। हमारे लिए इस त्रासदी की असली गंभीरता और जटिलता को जानना जरूरी है, जो हम अब तक नहीं जान पाए हैं। बीबीसी संवाददाता के ये पूछने पर कि क्या मोजाम्बिक सरकार ऐसी आपदाओं से निपटने में सक्षम है, ग्रेसा ने नहीं में जवाब दिया।
Now, the magnitude and the complexity of this...
इस तरह के भयावह और जटिल संकट से निपटना एक अकेली सरकार के बस की बात नहीं है। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद चाहिए। ये थे मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेसा मशेल के शब्द। फिलहाल राष्ट्रपति न्यूसी बायरा में कैबिनेट से मुलाकात कर रहे हैं ताकि आपदा का सही अंदाजा लगाया जा सके।
ईडाई तूफान के कारण 1,000 लोगों के मारे जाने की आशंका, ब्यौरा सुना रही थी सिंधुवासिनी। श्रोताओं, रुख करते हैं भारत का, जहां देश को अपना पहला लोकपाल मिल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की लोकपाल के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। लोकपाल बेंच में न्यायिक सदस्यों के तौर पर जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हैं। बाकी सदस्य हैं दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। देश ने पहले लोकपाल के लिए लंबा इंतजार किया है। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर बड़ा आंदोलन भी हुआ था। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय ने सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे से बात की।
इतने साल तो रुके, 5 साल, और रुके जिसमें जो इस कानून का स्पिरिट था उसको बिल्कुल ही सरकार ने नहीं अपनाया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस सिलेक्शन कमेटी से गायब थे। इसका पूरा जो सर्च प्रक्रिया है वो कानून अनुसार नहीं हुआ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाम देते या नहीं देते, वो किसी रूप में उनको रखते ताकि वो वैध रूप से उस कमेटी के स्पेशल इन्वाइटी नहीं लेकिन उस कमेटी के मेंबर होते, क्योंकि बाईपार्टिजनशिप उसका एक मूल मंत्र है। और इंडिपेंडेंस तभी आएगा जब बाईपार्टिजनशिप हो और एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का एक रिप्रेजेंटेटिव हो। अब इन्होंने जिस ढंग से ये अपॉइंटमेंट जाते जाते किया, जाते जाते मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी आ गया है, इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, पूरा टर्म खत्म हो गया है, तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है कि जिस लोकपाल के लिए हम रुके थे इतने समय, बहुत इंतजार था, उस लोकपाल का अपॉइंटमेंट ढंग से होता।
आपने नियुक्ति की बात की, किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुए, उसमें जो गतिरोध रहे, लेकिन लोकपाल का आना, क्या आप इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं या आप लोकपाल के आने को किस तरह से देख रहे हैं, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं?
नहीं, निश्चित तौर पर लोकपाल का अपॉइंटमेंट एक बड़ी जीत है और निश्चित तौर पर आगे ये चयन प्रक्रिया सुधरेगी, क्योंकि अगले लोकसभा में हम उम्मीद तो करते हैं कि वास्तव में ये एक स्थिति जो बनी जहाँ LOP नहीं थे वो नहीं रहेगा। लेकिन लोकपाल का आना और लोकपाल को लोकपाल कानून के तहत ठीक से काम करना, वो एक बहुत मायने रखता है। मतलब हमने CBI को लेके जितनी समस्याएं देखी, वो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा एक राहत मिलेगा, क्योंकि एक बॉडी होगा जो CBI के ऊपर निगरानी भी रख सकेगा और एक कलेक्टिव बॉडी होगा। लोकपाल मात्र केवल चेयर नहीं है, लोकपाल की एक पूरी ग्रुप है। और नागरिकों के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई थी।
21वीं शताब्दी में लोगों के पास एक अधिकार आया, सूचना का अधिकार, RTI। अब दूसरा ये अपॉइंटमेंट हुआ है लोकपाल का, 9 सदस्य आए हैं जिसके चेयरपर्सन जस्टिस घोष हैं। तो क्या ये भी भविष्य में इसी तरह से लोगों के लिए एक अहम चीज होने जा रही है लोकपाल?
अहम चीज निश्चित तौर पर है। सूचना का अधिकार मेरे ख्याल में हर आम व्यक्ति के अपनी जिंदगी में हर दफ्तर के पास जाने का मौका है, ये उससे थोड़ा भिन्न है। मैं कहूंगा कि सूचना के अधिकार के 2005 के कानून को लाने में एक बहुत लंबा रास्ता चला, जिसके दौरान बीच बीच में कानून बने लेकिन उनके सुधार होते रहे। इस कानून का भी सुधार करना पड़ेगा और इनको राज्य में लागू करना पड़ेगा और तब उतना होगा, लेकिन लोकपाल आना बहुत महत्व का है।
जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल नियुक्त, बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे। बढ़ते हैं आगे। जलमार्ग से चुनावी अभियान पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपनी यात्रा का समापन वाराणसी में कर रही हैं। प्रयागराज से शुरू हुई 3 दिन की इस यात्रा में उन्होंने लोगों से सीधे संवाद किया तो प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और मजारों में सजदे भी किए। लेकिन चर्चा इस बात की है कि प्रियंका गांधी की ये यात्रा और प्रचार का तरीका लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिलाने में कितना मददगार साबित होगा। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
प्रयागराज से सोमवार को अपनी यात्रा शुरू करने वाली प्रियंका गांधी ने मंगलवार का दिन भदोही और मिर्जापुर में बिताया। इस दौरान उन्होंने गंगा किनारे बसे गांवों में लोगों से बात की और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां उनका लोगों से सीधा संवाद हो सके।
लोग कहते हैं कि मैं अपनी दादी की वजह से रखती हूं। मेरी दादी जी के प्रति इतनी आस्था क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि उन्होंने आपके जीवन भर काम किया।
प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों की भी जमकर आलोचना की।
आजकल जो राजनीति चली है और खास तौर से पिछले 5 सालों में जो भाजपा सरकार ने राजनीति चलाई है, उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए तो दरगाह में भी मत्था टेका, वकीलों और छात्रों से संवाद किया, स्थानीय नागरिकों की समस्याएं पूछी तो बुनकरों से भी मुलाकात कर उनके हालात का जायजा लिया। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार की नीतियों से समाज का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है अपनी यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगी। वाराणसी में वो अस्सी घाट पर लोगों से मिलेंगी, होली मिलन समारोह कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगी। इस बीच कुछ लोगों ने उनके इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। स्थानीय अधिवक्ता कमलेश त्रिपाठी ने इस बारे में प्रशासन को पत्र भी लिख कर दिया है।
प्रियंका वाड्रा जो ईसाई हैं, उनका सनातन धर्म मंदिर और उसकी पूजा पद्धति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उनका प्रवेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो सनातन धर्मी हिंदुओं का पवित्र पौराणिक स्थल है उसमें उनका रोका जाए प्रवेश, ये मांग हमने जिलाधिकारी महोदय से करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हुए भी हमने पत्र दिया है। लड़की पक्ष कन्या जिससे शादी करती है वो उसकी ही जाति कुल गोत्र का वर्ण करती है।
लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी इन आरोपों को निराधार बताते हैं।
प्रियंका जी हिंदू हैं, उनके पति हिंदू हैं, इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इससे एक चीज तो साफ हो गई, कितनी डरी है भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी से।
प्रियंका गांधी ने अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान पांच संसदीय क्षेत्रों को कवर किया और किसी बड़ी रैली की बजाय सीधे लोगों से संवाद का मौका ढूंढा, चाहे वो रोड शो के जरिए रहा हो या फिर छोटी सभाओं के जरिए। जानकारों का कहना है कि इस रणनीति के जरिए उनका लोगों तक सीधे पहुंचने का मकसद जरूर पूरा हुआ, लेकिन आम लोगों से उनका ये मेलजोल वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये एक अहम सवाल है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने बच्चों के बस्तों से बोझ कम करने की बात कही है। वहीं कक्षा 9 की इतिहास की किताब से 3 अध्याय खत्म करने की पहल भी की है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देश पर किया गया है। इसे लेकर एक बहस शुरू हो गई है। कुछ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ आलोचना। सुनिए BBC संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
NCERT की इस पहल का कुछ शिक्षाविद स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसकी आलोचना। मगर कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक से 3 अध्यायों को खत्म करने के फैसले ने बहस छेड़ दी है। JS राजपूत NCERT के निदेशक रह चुके हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 में बनी थी उसे 5 सालों के बाद बदला जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि दुनिया भर में हर 5 सालों में पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन होता है।
ये 2005 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना था उसको 5 साल बाद फिर बनना चाहिए था। दुनिया भर में करिकुलम फ्रेमवर्क आर रिवाइज्ड एंड देन बुक्स आर रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली, और ये सुझाव मैंने कई बार दिया, अनफॉर्चुनेटली आज तक उसको रिवाइज नहीं किया गया।
राजपूत कहते हैं कि अगर धर्म को पाठ्यचर्या के रूप में डाला जाता है तो लोग शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते हैं, जबकि धर्म हकीकत है।
मेरा एक ख्याल था और आज भी है, रिलीजियंस के बारे में बेसिक जानना चाहिए बच्चों को और कम्युनिटी जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस शुड हैव बीन डन 50 इयर्स अगो, इट शुड हैव स्ट्रेंथेंड सेक्युलरिज्म, कि रिलीजियंस आर ए रियलिटी, हमारा सोशल क्वेश्चन कमजोर है। तो अगर हम उस बेसिक चीज को मान ले तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
लेकिन NCERT के ही अध्यक्ष रह चुके कृष्ण कुमार पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। उनका कहना है कि 2005 में बनाए गए पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को भुला दिया गया है।
फिर से पुरानी पद्धति की ओर जा रहे हैं जिसमें पूरी किताब प्रेस्क्राइब की जाती है और परीक्षा ली जाती है, ये सब चीजें, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है और बड़ा दुखद है ये कि हम पहले 2 कदम आगे बढ़े थे, 3 कदम पीछे जा रहे हैं।
जिन 3 अध्यायों को कक्षा 9 की इतिहास की पुस्तक से हटाया गया है उनमें से दक्षिण भारत की नादर जाति का उल्लेख किया गया है जिन्हें छतरी का इस्तेमाल करने की मनाही थी। इसके अलावा उन्हें सोने के आभूषण और जूते नहीं पहनने दिए जाते थे। कृष्ण कुमार कहते हैं कि कुछ अध्याय इतिहास में इसलिए रखे गए हैं ताकि वो विषय विद्यार्थियों के लिए रोचक बना रहे।
बर्डन का सहारा लेकर उसको बोझ के प्रश्न को आड़ लेकर के और बहुत कुछ काट दिया है। एक जो नीति बनी थी कि भाई पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए रोचक हो, उसमें इतिहास का जो बोध है वो केवल एक सिलसिला, एक तरह की एक बड़े बड़े राजाओं और युद्धों की सूची नहीं होगी बल्कि तरह तरह की चीजें होंगी, जैसे इसमें कपड़े का इतिहास है, क्रिकेट का इतिहास है, तो उससे बहुत रुचि जागी है। और अगर आप बच्चों से बात करें तो सबसे ज्यादा खुश होनी अध्यायों से हैं। ये जरूरी नहीं कि उन अध्यायों को आप पढ़ाएं ही, कि कोई 4 अध्याय आप गहराई से पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसी तरह इतिहास की किताब में जिस अध्याय को हटाया गया है उसमें इंग्लैंड और अमरीकी किसानों की चर्चा के साथ साथ बंगाल में अफीम की खेती करने वाले किसानों की बात भी कही गई है। कहा जा रहा है कि अध्यायों को हटाने के बाद नई पाठ्य पुस्तकें नए अध्ययन वर्ष से उपलब्ध कराई जाएंगी। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिंधु वासनी
जी। शाहिद, आज गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बहुमत साबित करना होगा और ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा आज अखबारों के फ्रंट पेज पर छाया है भारतीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। पहली वजह, उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन की 1,22,00,000 की 13 संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई कश्मीर घाटी में चरमपंथी और अलगाववादी संगठनों की फंडिंग रोकने के मद्देनजर की गई है। दूसरी वजह, ईडी ने यह भी कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेना जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। और ईडी ने यह भी कहा कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने वाड्रा से कहा कि जब भी ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए उन्हें वहाँ हाजिर होना चाहिए। और इसके साथ ही अदालत ने वाड्रा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी है और रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में संदिग्ध संपत्ति के सिलसिले में जांच चल रही है।
यानी कि अब सिंधु वासनी राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज होंगी।
हाँ, और हाँ, ईडी ने यह भी कहा कि वाड्रा ने पहले जो आरोप लगाया था कि ये राजनीतिक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ईडी ने कहा कि ये गलत है, राजनीतिक द्वेष की वजह से नहीं हो रहा है।
अच्छा।
और शाहिद, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर छपी है
जी।
तस्वीर है कश्मीर घाटी के 15 साल के इरफान रमजान शेख की, जिन्हें मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र
दिया गया
जी।
है और
वो सिर्फ 15 साल के हैं और इरफान को शौर्य चक्र शोपिया में चरमपंथियों से बहादुरी से लड़ने के लिए दिया गया। दरअसल 2 साल पहले उनके घर में 3 चरमपंथी घुस आए थे और उन्होंने उनके पिता को गोली मार दी। इसके बाद इरफान अपने परिवार के बाकी जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर चरमपंथियों से भिड़ गए और इस संघर्ष में एक चरमपंथी मारा गया और बाकी दो भाग गए। और ये सब जब हुआ उस वक्त इरफान सिर्फ 13 साल के थे, अभी वो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं।
एक तस्वीर का आपने जिक्र किया, एक तस्वीर और जिक्र करता हूँ मैं सिंधु वासनी में। हिंदुस्तान अखबार पर देख पा रहा हूँ, इसमें प्रियंका गांधी माँ विंध्यवासिनी मंदिर जो मिर्ज़ापुर में है वहाँ पर बैठी हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। उनके माथे पर चुनरी है सर पे, और वो आज, जैसे हमने भी रिपोर्ट में सुना कि वो आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी, जिसको लेकर कुछ लोग विरोध
भी
कर रहे हैं,
चल रहा है जी।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी। बढ़ते हैं आगे। आम चुनाव में चौकीदार चुनावी नारा बन गया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चौकीदार को लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश में है। राजनीति से अलग असल में चौकीदारी करने वाले लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी चुनौतियां क्या हैं, यही जानने की कोशिश की पूनम कौशल ने इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को चौकीदार कहा तो विपक्षी कांग्रेस ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारा दे दिया, चौकीदार चोर है। चुनावी मौसम में इस नारे के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपना नाम बदलकर ही चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने जब अपने आप को चौकीदार कहा तो चौकीदारी करने वालों को कैसा लगा, मैंने यही पूछा नोएडा में सुरक्षा गार्ड का काम कर रहे इन नौजवानों से।
मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है अभी इस समय, उन्होंने आगे नाम रख दिया है चौकीदार। हमें अपने आप पे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं भी चौकीदार कर रहा हूँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी चौकीदार का आगे नाम रख दिया है।
नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए लगाए आगे जो जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से हम किसी ऑफिस में, किसी सोसाइटी में हम लोग जॉब करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी उसकी सेवा करते हैं।
कोई प्रधानमंत्री चौकीदार के लायक नहीं होता है, वो एक देश का एक बहुत बड़ा वो होता है सहयोगी, उसके लिए बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन चौकीदार तो बोल देते हैं ऐसा ही लोग, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो असल में चौकीदार हैं, उनके काम करने के हालात कैसे हैं, खुद इन चौकीदारों से ही सुनिए।
300 दिन हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है, 12 घंटा वो भी, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ सुनवाई नहीं।
9,000 रुपए देते हैं, ना SIPF देते हैं हमको, ना कुछ देते हैं, ना कोई सुरक्षा, ना कुछ भी, ऐसा ही करते रहते हैं और सैलरी भी टाइम पे नहीं देते हैं।
महीने में अगर एक भी छुट्टी हो जाए, बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके पैसे भी कट जाते हैं।
मैंने करीब 50 चौकीदारों से बात की। अलग अलग कंपनियों के लिए काम करने वाले इन लोगों में से हर कोई रोजाना 12 घंटे की ड्यूटी करता है और महीने के 300 दिन बिना छुट्टी के काम करता है। तो फिर क्या वजह है कि ये लोग ऐसा पेशा चुनते हैं जहां उनकी मेहनत का शोषण होता है।
मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली, इसलिए मैं ये चौकीदारी की नौकरी कर रहा हूँ और वो भी 9,000 रुपए में।
लेकिन जब जॉब नहीं मिलती है तो उसी वजह से हम लोग को जॉब सिक्योरिटी की पकड़ना पड़ता है।
कंपनियों में, कई कंपनियों में देखा तो किसी में 7,000 किसी में 8,000 सैलरी है, तो मैंने सोचा इससे मेरा घर परिवार चलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं सिक्योरिटी में जॉब करी।
पिछले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा वादा देश में रोजगार पैदा करने का किया था। उन्होंने श्रमिकों के लिए हालात बेहतर करने का वादा भी किया था। ये वादा याद दिलाते हुए एक सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर गजराज कहते हैं,
देखो उन्होंने जो वादे किए थे कि सर्वप्रथम तो जब हम अपने थे पे पहुंचेंगे केंद्र में, तो एक तो ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल खत्म करेंगे, दूसरा कि प्राइवेट संस्थाओं के अंतर्गत जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनको हम 8 घंटे की जॉब और वीकली ऑफ दिलाएंगे, 15,000 से नीचे अकुशल कारीगरों की सैलरी होगी और इसके ऊपर जो कुशल हैं उनको 20,000 से 25,000 तक पेमेंट किया जाएगा। ये सब उन्होंने वादे किए थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
पहले किए गए वादे भले ही पूरे ना हुए हों, लेकिन आज जब चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों चौकीदारों को संबोधित करेंगे तो उन्हें उनसे बहुत उम्मीदें होंगी।
अब ऐसा मान लो कि चौकीदार अगर नाम रख दिया है तो कुछ चौकीदारी के उनके बारे में कुछ सोचे।
हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री कुछ जैसे हमारे जैसे लोग उनके लिए कुछ सोचे, सबके लिए जो ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है उनके लिए कुछ करे मोदी जी।
प्रधानमंत्री के अपने आप को चौकीदार कहने से ये मेहनतकश खुश हैं, लेकिन इनकी मेहनत की लूट कब खत्म होगी, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। देखना यह होगा कि उन्हें एक बार फिर वादा मिलता है या वाकई में उनके लिए हालात कुछ बदलते हैं। नोएडा से बीबीसी हिंदी के लिए मैं पूनम कौशल।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। भारत की पृथ्वीराज टी और काइनान चेनाई मेक्सिको में चल रहे ISSF शॉटगन विश्व कप पुरुष ट्रैप फाइनल में प्रवेश के करीब पहुंच गए हैं। इस टूर्नामेंट से टोक्यो ओलंपिक 2020 के 2 कोटा स्थान तय होंगे। महिला ट्रैप टीम हालांकि टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 2020 U17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत के दिए जाने से फीफा के फैसले की सराहना करते हुए कई लोगों ने इसे गेम चेंजर माना है। भारत में फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद का कहना है,
देखिए ऐसा है कि जब भी आपको किसी भी स्तर पर, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, इंटरनेशनल और वो भी फीफा से कोई चीज अलॉट होती है, सैंक्शन होती है, उसकी मेजबानी का हक आपको मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी खबर है और ये खुशी की बात है।
अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। हाल ही में भारत के पटियाला शहर में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के अविनाश सेबल ने 3000 मीटर स्टेपल चेज के रिकॉर्ड समय के साथ जीतकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरी तरफ फर्राटा स्टार हिमा दास ने फेडरेशन कप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 52.88 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वो एशियाई चैंपियनशिप का मार्क हासिल करने में नाकाम रहीं। हालांकि उनके पिछले रिकॉर्ड और काबिलियत को देखते हुए उन्हें एशियाई चैंपियनशिप टीम में जगह जरूर मिल जाएगी। 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन इस बार कतर दोहा में किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के 63 देश भाग लेंगे, जिसकी शुरुआत होगी 21 अप्रैल से। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी अफ्रीका के 3 देश विनाशकारी तूफान इडाय से जूझ रहे हैं। ये देश हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी। साइक्लोन के साथ ही इन देशों में भयानक बाढ़ और भूस्खलन का कहर भी जारी है। अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने आईएस का आखिरी गढ़ माने जाने वाले बागूज गाँव को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है और वो इसका जश्न मना रहे हैं। यूरोपीय संघ के मुख्य ब्रेग्जिट मध्यस्थ ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन संघ से बिना किसी स्पष्ट योजना के बाहर निकलता है तो इसका खामियाजा व्यवसाय और राजनीति को भुगतना होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा वक्त में ब्राज़ील और अमेरिका जितने करीब हैं उतने वो पहले कभी नहीं थे। ये बातें उन्होंने राष्ट्रपति जेआर का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए कही। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।